ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुनुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप परा गहिं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रजायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतु से नमः। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुनुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चाधरित्वेन समस्तशास्त्रै रूकस्तथा भावितैव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। एक बार सभी लोग हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। भगवते वासुदेवाय भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमस्वरूपिणी भक्तिर्भवति निष्ठितिः श्रीमद्भागवतम् सप्तम स्कंध अध्याय छः श्लोक संख्या 26 हरे कृष्ण 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 हरे प्रभु निकालो कहाँ है हाँ अच्छा कोई बात नहीं निकालता छः अध्याय 26 है ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धर्मार्थ काम इतियो वीति स्त्री वर्ग इच्छात्रयेन यदमौ विशद च वर्ता मन्ये तदेतखिलं निगमस्य सत्यम् स्वात्मा परं स्वसुहृदम् परमस्य पुंसः धर्म अर्थ आर्थिक उन्नति काम संयमित इंद्रिय तृप्ति इति इस प्रकार यह जो अभिहित बताए गए त्रिवर्ग तीन का समूह इच्छा आत्म साक्षात्कार त्रयी वैदिक अनुष्ठान नय तर्क दमौ तथा विधि एवं व्यवस्था की विद्या विविधा अनेक प्रकार च भी बढ़ता वृत्ति परक कर्तव्य या जीविका मन्ने मैं मानता हूँ तथा उनको एतत् वे अखिलम सारा निगमस्य वेदों का सत्यम सत्य स्वयं आत्म समर्पण अपने को पूरी तरह अर्पित कर देना स्वसुहृद अपने परम मित्र को परमस्य परम पुंसः पुरुष अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों का वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। इन तीन वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार वैदिक आदेशा अनुसार संपन्न करना कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं, अतएव मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज के ये उपदेश भक्ति के दिव्य स्थिति पर बल देता है। जैसा कि भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें पुष्टि की गई है, मा चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहता है एवं तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है, ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य तो आध्यात्मिक धरातल पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में की है, जहाँ पर वह कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। वेदों में केवल तीन गुणों का वर्णन मिलता है, हे अर्जुन इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे परे हो जाओ, भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिलती हो। भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का चरम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पद पर बने रहना है, मानव उद्देश्य यही है। सरांशत वैदिक कर्मकांडों तथा आदेशों की असमानता अवमानना नहीं है कि कर्मकांड तथा आदेशों की अवमानना नहीं है कि जानी चाहिए कि आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के साधन हैं, किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सारे वैदिक अनुष्ठान केवल समय के अव्यय हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवतम के 1:2:8 में हुई है, धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कर्तव्य धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा किए जाएं, यदि वे परमेश्वर के संदेशों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो उन पर किया सारा श्रम निरर्थक है। यदि कोई दृढ़तापूर्वक धर्म के कार्यों को करता है, किंतु यदि वह अंततः परमेश्वर की शरण में नहीं जाता तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सारे साधन समय तथा श्रम के अव्यय मात्र है। प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य है, आप समझें कि ये लेक्चर है, कथा ही है। प्रहलाद महाराज अपने छात्रों के बीच में ये बात कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज का जन्म असुर परिवार में था, ऐसे तो महाभागवत हैं सब वहां पर, प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं, बलि महाराज उन्हीं परंपरा में हैं, महाभागवत हैं। प्रहलाद महाराज असुर बालकों के बीच में ये उपदेश करते हैं। धर्म अर्थ काम इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म, धर्म पूर्वक धन कमाना, आजकल तो धर्म पूर्वक धन है ही नहीं, अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, झूठ बोल करके धन अर्जन करना चाहते हैं। इसको प्रहलाद महाराज बिल्कुल सख्त माना करते हैं। कम से कम जीवन में ये संकल्प ले लें कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। एक दिन झूठ ना बोल करके आप देखिए, आप में इतना तेज, आपके अंदर इतनी आकर्षण, इतना धर्म का मजबूती से आपके हृदय में प्रविष्ट होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है, इसलिए सत्य भाषण करना चाहिए। जितने बड़े बड़े आचार्य हैं सभी सत्य भाषण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। अब सत्य तो मीठा हो नहीं सकता है इतना, लेकिन मीठा हो जाता है, सत्य मीठा होता है, आराम से उस बात को कहा जा सकता है। इसलिए सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इसको त्रिवर्ग कहते हैं, धर्म अर्थ तथा काम, इन तीनों से मोक्ष के तीन साधन हैं। वैसे बताया गया है इन तीन वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार वैदिक उपदेशानुसार संपन्न कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था बनाई गई है। इन तीनों को पालन ठीक से करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, आपका धर्म है। जीव का धर्म है जीवेन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सबका धर्म है कि हम भगवान के सेवक बने, सेवक हैं, एक दो दिन का नहीं, नित्य सेवक हैं प्रभु का। और यदि सेवक बन जाते हैं, नाम के पीछे दास लगा देते हैं, तो अब हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे हम दास लगाते हैं, दीक्षा के समय में जब गुरु जी को शरीर को अर्पित करते हैं, गुरु जी को दे देते हैं शरीर को, तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। विधि तो यही है, लेकिन अब आजकल तो दीक्षा शिक्षा सब बाहर में फैशन हो गया है। बगल वाला दीक्षा लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, बगल वाला ने कार्य किया तो मैं भी कर लेता हूँ। आप हम सब तो वैष्णव हैं, संत हैं, वैष्णव के लाइन में हैं, परंपरा में हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। हम लोगों को इस विधि को जरूर पालन करना चाहिए ठीक से, दृढ़तापूर्वक संकल्प हो करके। जब दीक्षा के समय दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर देता है दीक्षा के समय शिष्य, और गुरु जो शरीर का है नाम को बदल लेते हैं, बदल कर कहते हैं आज से अब ये कार्य करना, और उस कार्यों को ठीक ठीक से करने से हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारी आध्यात्मिकता दिनों दिन बढ़ता जाता है उसमें। तो जब हम दास बन जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रहलाद महाराज यही बात समझाना चाहते हैं असुर बालकों से कि हमें नियमानुसार धार्मिक होना चाहिए और धर्म के बाद में अर्थ कमाना चाहिए। अर्थ जो हमारे पास होता है, जो पैसा होता है, वो भगवान के लिए पैसा होता है। जो भी आप हम सब सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ में जो भी हैं, जिस आश्रम में आप हैं, वो सारा संपदा भगवान का है आपके पास, क्योंकि आप दास बन गए हो, आप अपने शरीर को दे चुके हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। यदि आप स्वतंत्र पूर्वक काम करेंगे तो फिर आपका कोई भी लाभ नहीं हो सकता। भागवत जी में श्लोक आया है ना, कहते हैं धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पाद यद यदि रतिम श्रमये वही केवलम। चाहे आप कुछ भी कर ले, जितना मर्जी धर्म का उत्थान कर ले, और यदि वह धर्म वह कर्म वह अर्थ यदि भगवान के तरफ नहीं खींचता है, भगवान को आकर्षित नहीं करता है, तो हमने केवल जीवन में श्रम किया, केवल परिश्रम किया। जैसे हम सब मंगला आरती में आते हैं, गुरु पूजा में आते हैं, क्लास में बैठते हैं। एक बार श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी ने कथा कह रहे थे कि यहां तक कि यदि आप भागवत पढ़ते हैं ठीक से और भागवत में आपका मन नहीं है, केवल पढ़ते हैं, केवल याद करते हैं, उस भागवत को पढ़ने से, कथा सुनने से, गुरु जी के फूल चढ़ाने से, आरती करने से यदि उनमें प्रेम नहीं बढ़ा, आकर्षित नहीं हुए, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं आया, तो समझो कि हमने केवल श्रम किया उसको। श्रम ये वही केवलम। धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पाद यद यदि रतिम। नोत्पाद यद यदि रतिम, यदि रति नहीं हुआ, प्रेम नहीं बढ़ा, तो श्रम ये वही केवलम, केवल श्रम है वो, केवल परिश्रम है वो। इसीलिए हमें यदि अर्थ धर्म काम ये तीन जो त्रिसर्ग बताया गया, इसको पालन करना चाहिए ठीक से, तब मोक्ष के तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत ललायत होना चाहिए, बहुत हमारे मन में उत्कंठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए हमारे मन में, हमारे जीवन में उत्कंठा होना चाहिए भगवान के प्रति, प्रेम दिनों दिन प्रेम बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति, आकर्षण बढ़ना चाहिए, आसक्ति हो जाना चाहिए भगवान से, भगवान के देखे बिना जीव न रहे, मन माने ही ना, कथा के बिना मन माने। कुछ भक्तों को मैं देखता हूँ बहुत बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी कान में लीड लगा के कथा सुनते रहते हैं, पूरे वृंदावन में जाता है ना ये कथा सब। इसके लिए प्यास होना चाहिए। एक बार राजस्थान में जब गाड़ियां चलती हैं ना, ट्रेनें चलती हैं, वो भी गर्मी के दिन में, तो स्टेशनों में पानी नहीं होता है, ऐसा ही वहां गर्म बहुत होता है, गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। गर्मी का समय था, एक छोटा सा बालक घड़ा में या बाकेट में पानी लेकर के ट्रेन में चढ़ गया और चढ़ करके उसने बोला, आवाज लगाई सबको कि भाई जल बहुत शुद्ध है, पवित्र जल है, कुएं का जल है, 10 रुपया गिलास है, एक गिलास 10 रुपया का है, 10 रुपया गिलास है। अब आवाज लगाते जा रहा था, एक सेठ जी बैठे थे, सेठ जी उसको इशारा किए, बुलाए आओ जरा, बोला जल कैसे देते हो, बोले 10 रुपया गिलास है साहब, पानी कैसा है, बोले बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पानी है, कुआं का जल है, हमारे घर में ही कुआं है, उसका उसका जल है ये, बढ़िया जल है? बोले जी साहब बहुत बढ़िया जल है, शीतल जल है। सेठ ने कहा कि पांच पांच रुपया गिलास में दे दोगे? उस बच्चा ने गिलास का पानी तो नहीं दिया पांच रुपया में, लेकिन एक व्यंग भरी मुस्कुराहट छोड़ते हुए सेठ जी के पास से चल दिया। वो सेठ जी के साथ में एक संत भी बैठे थे, संत बैठे थे, तो संत उस बालक के पीछे पीछे जाने लगा। ट्रेन जाने वाली थी, वो बालक ट्रेन से उतर गया, वो संत भी उतर गया। संत ने कहा कि बेटा तुम ये बताओ कि सेठ ने तुमने कहा दस पैसा, हाँ उसने कहा पांच पैसा, तुमने उसको जल नहीं पिलाया, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने कोई व्यंग छोड़ करके चले गए, क्या बात है? बालक ने हंस करके कहा कि समय बीत गया, ट्रेन चली गई, अब बीत गई बात, छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे मुस्कुराहट में बड़ी गहरी विचार छुपा हुआ है, तुम बताओ क्या बात है? बोले कि बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने कहा दस पैसा, सेठ ने कहा पांच पैसा, सेठ ने बहुत तर्क किया पानी कैसा है, कहाँ का पानी है, ठंडा है कि गर्म है, गंदा है कि पवित्र, बहुत प्रश्न किया। आप जानते हैं क्यों प्रश्न किया? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी थी, प्यास ही नहीं था उसको। प्यास होता तो कभी प्रश्न नहीं करता और भाव भी नहीं करता। हम लोगों को ऐसा ही प्यास होना चाहिए, भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यही बात प्रहलाद जी समझाना चाह रहे हैं। अब इसमें वर्णन करते हैं, मैं फिर से पढ़ लेता हूं। प्रभुपाद जी के द्वारा कहना बहुत अच्छा है ये सब। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता है, च्युत का मतलब होता है पोजीशन से नीचे गिर जाना, किसी भी अवस्था में अपने पद को नहीं छोड़ता है। हम लोगों का सबसे सुंदर पद क्या है? भगवान के दास बनना, इससे सुंदर पद कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या है? हम कृष्ण दास हैं, कृष्ण बलराम दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं। दास बनना सबसे ऊंच पोजीशन है, भगवान के सेवक हैं हम, भगवान जो कहते हैं जैसे कहते हैं उस बात को मानना, भगवान की जो जो आज्ञा है उस बात को ठीक से समझ करके अपने हृदयगमन करना, उसको हृदय में उतार लेना। अपने पद से कभी भी भक्त च्युत नहीं होता, गिरता नहीं, मंगल आरती से कभी विमुख नहीं होता। गुरु पूजा में निश्चित आना है, 16 माला का जो जप करना है वो ठीक ठीक से, 16 माला ही तो है, बहुत माला थोड़ी है। प्रभुपाद जी ने 16 माला के नियम लगाया है, केवल 2-2.5-3 घंटे समय दीजिए, बढ़िया से समय दीजिए, वही 3 घंटा का समय आपका गिनती होगा। एक संत थे बेचारे, बहुत वृद्ध थे, बाल दाढ़ी सब श्वेत हो गया था उनका। किसी ने पूछा कि बाबा आपका उम्र कितना है? बोले कि बेटा अभी मैं 40 वर्ष का हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आपके मुख में तो एक भी दांत नहीं है, बाल श्वेत हो गया है, आप कहते हो कि 40 वर्ष के हूं। तो बोले कि देखो मैं 40 वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, 40 साल से ही मैं भक्ति कर रहा हूं, तो इसी भक्ति का जीवन का गिनती होगा ना। अब हमने 80 साल 90 साल में क्या क्या किया, क्या क्या कहाँ कहाँ मिले, किससे किससे मिले, उसको कौन जानता है, कौन गिनती होता है उसका, तो गिनती जमराज करते हैं। 40 साल जो गिनती किए हैं भगवान गिनती किए हैं, इसलिए मैं केवल 40 साल का हूँ। भक्त कभी भी अपने पद से गिरता नहीं है, नीचे नहीं आता है। भगवान को कहते हैं अद्वैत मच्युत अनादि अनंत रूपम, भगवान अच्युत हैं, भगवान कभी भी अपने पद से नहीं गिरते हैं और भक्त भी अपने पद से कभी नहीं गिरते। अच्युत नाम काम ने दिया था, भगवान रास मंडल में जब पधारे, असंख्य गोपियों के बीच में जब प्रभु नृत्य करने लगे तो काम भी अपना तैयार होकर के, सजग होकर के, न जाने भगवान पर कितने काम का बाण छोड़ दिया, लेकिन भगवान अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरे, देखे भी नहीं। काम हार गया, काम लज्जित हो गया और लज्जित होने के बाद में कहा कि प्रभु मैंने बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि सबको च्युत कर दिया, नीचे गिरा दिया, एक आप ही ऐसे हो जो मेरे बाणों से काम से प्रभावित नहीं हुए, आज से आपका नाम मैं अच्युत रखता हूं। भगवान कभी भी अपने पद से गिरते नहीं है और संत वैष्णव भी कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। तो यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं कि जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म भुवाय कल्पते, तत्काल प्रकृति के गुणों को पार करके भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। प्रकृति का जो गुण है तमो रज सत, इन तीनों गुणों से परे उठना है, ऊपर उठना है, और ऊपर उठ करके हम सबको भगवान के तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें भगवान से, भगवान के प्रति दिव्य पद पर प्राप्त कर लेना है, ब्रह्मभूत अवस्था में प्रवेश कर जाना है। एक होता है जीव भूत, एक होता है भूत। भूत माने श्मशान वाले नहीं, ये चलते फिरते भी भूत हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, वो श्मशान वालों से ज्यादा खतरनाक भूत हैं ये सब। इन भूतों से डरना चाहिए, पता नहीं आपके कान में क्या छोड़ देंगे आकर के, अरे क्या दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो। ये चलते फिरते भूतों से सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधानी की जरूरत है। अरे लाल कपड़ा रंग लिया है, तुम लोग खा करके मोटे हो रहे हो, कुछ भजन साधन करते हो, ऐसे ऐसे सब भी ऐसा भूत छोड़ता है, इन भूतों से सावधान। चलते फिरते रिक्शा मोटरसाइकिल जो भागता है केवल धन के पीछे, स्त्री के पीछे, यश ख्याति के पीछे, उन भूतों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। एक होता है भूत, एक होता है जीव भूत, जीव भूत सनातन शब्द आया हुआ है, एक होता है जीव भूत, उसके अंदर थोड़ी उससे थोड़ा ऊंचा है, वो उसका थोड़ा संग कर लेना चाहिए, सनातन अंश है, जीव है, उसको प्रीचिंग की तैयारी कर लेना चाहिए। तीसरा होता है ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, यह स सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति में जो निरंतर रमण करता है, विचरण करता है, चलता है, आनंद लेता है, वो ब्रह्मभूत है। उस व्यक्ति को किसी ने हार पहना दिया तभी भी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, और पहनाया हुआ हार को यदि किसी ने निकाल लिया तो कहता है कि ये भी भगवान की कृपा है। हर अवस्था में प्रसन्न रहना, हर अवस्था में खुश रहना, इसी को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदमय जीवन उसका जो रहता है। कभी कभी लोग पूछते हैं आप लोग कौन सा टैबलेट खाते हो हमेशा खुश रहते हो, आप लोगों के चेहरे पर बड़ा प्रसन्नता रहती है, क्या करते हो आप? देखो हमारे इस्कॉन के जो गौड़ीय भक्त हैं, वो छोटे छोटे वृद्ध वृद्ध भी भक्तों में उनके पास जाओ, उनकी आवाज़ सुनो, उनका संग करो, लगता है कि आध्यात्मिक वाइब्रेशन से परिपूर्ण है उनका हृदय। इसका कारण एक ही है कि मंत्र का ठीक ठीक से हम लोग जाप करते हैं बैठ करके, हरे कृष्णा ब्रह्मभूत या आत्म साक्षात्कार के पद पर वह व्यक्ति बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था भी प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार भी उसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकता। कोई भी भौतिक चीज जो है यदि भगवान से संपर्क नहीं रखता है या भगवान को हमने उसको नहीं दिया तो वो भौतिक है। भगवान को देने के बाद उसमें सत्यता आ जाती है। जैसे आप कोई फल खरीदते हो, कोई वस्त्र लेते हो, कोई भूषण खरीदते हो, उस सब कुछ भगवान को निवेदित कर दीजिए, सब कुछ भगवान को दीजिए। तुम्ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पट माने कपड़ा, भूषण माने गहना। आपके पास जो कुछ भी है उसको सत्य बनाने के लिए भगवान के पाद पद्मों में अर्पित कर दीजिए, पहले दे दीजिए। एक संत थे तो मैं बोला कि यहाँ क्यों खड़े हैं, बाप बढ़िया फल का दुकान था, तो मैं बोला कि आप यहाँ बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि खड़े हैं आप, तो बोले कि बस महाराज जी ऐसा कुछ बात नहीं है, जितना दुकान में फल है ना वो मैं सब भगवान को ऑफर कर रहा हूँ यहीं से। बताओ, वो दुकान ही ऑफर कर रहे थे भक्त वहाँ पर। तो जहाँ भी देखो कोई बढ़िया चीज नहीं लेने का विचार है तो वहीं से वहीं भगवान तो कहीं से भी ले लेंगे ना, हमारा भाव को भगवान तो कहीं से भी स्वीकार कर लेते हैं। द्रौपदी महारानी तो हस्तिनापुर में बैठ करके, इंद्रप्रस्थ में बैठ करके भगवान को बुला रही थी, भगवान वहां से आकर के वस्त्र को बढ़ा दिया। गजेंद्र कौन सा पानी में उठा करके माला जप रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो डूब रहा था, घबराया था, अशांत हो रहा था। पूर्व जन्म के जो भक्ति थी उसके अंदर जो संचित सत्कर्म था वो याद आया। अब फूल भी बहुत अच्छा नहीं था, बहता हुआ फूल आ रहा था, उसी फूल को उठा करके प्रेम से भगवान को दिया और भगवान आकर के गजेंद्र को जल से रक्षा कर दिया। वहां से कहीं से भी दे सकते हैं भगवान को। भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम कैसे दे रहे हो। देते समय तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा विचार कैसा है। 56 प्रकार का भोग हो और उस भोग में विचार ठीक ना हो, देने की ठीक से तैयारी ना हो, भगवान उसे कभी भी नहीं मानते हैं। और यदि बहुत बढ़िया पदार्थ नहीं है, खूबसूरत नहीं है, अच्छा नहीं है, और यदि आपका भाव मजबूत है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। माता शबरी ने कोई ऊंच जाति के नहीं थी, भैरनी थी, बड़ी नीच जाति की थी, संत महात्मा उससे घृणा करते थे। जिस जल में वो पानी भरने जाती थी वहां संत महात्मा ब्राह्मण वैष्णव स्नान नहीं करते थे, नीच जाति की है, पानी छूत हो गया, ऐसा भाव से वो लोग करते थे। लेकिन वही माता सेवरी अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों को पालन करते करते, मतंग ऋषि ने बड़ा विरोध किया, मतंग ऋषि से संतों ने कि नीच जाति की है, बेलनी है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, आप आश्रम में इसको आश्रय दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मतंग ऋषि उसके भविष्य को जानते थे, संत ब्राह्मण वैष्णव गुरुजन तो त्रिकालदर्शी होते हैं, हाँ, वो समझ गए कि इसके जीवन में भगवान आने वाले हैं, उसको आश्रम में स्थान दिया। स्थान देने के उपरांत उस जब जाने लगे मतंक ऋषि इस संसार से, तो एक ही बात कहा कि बेटी भगवान की प्रतीक्षा करना, इस आश्रम को छोड़ करके मत जाना। प्रतिदिन अपने आश्रम को साफ करना, एक दिन इस आश्रम में राम पधारेंगे। और गुरु की बात सत्य हुई, घटना घटी और राम जी आए। माता सेवरी आनंद के सागर में डूबने लगी, हिलने लेने लगी, एकदम कहाँ बैठा हूँ, कहाँ क्या दूँ, कुछ भी नहीं था, खट्टा खट्टा मीठा मीठा बैर था, वो भी बैर चक चक करके दे रही थी, बताओ। और भगवान ने प्रेम से खाया, कितना आनंद से खाया। ये अवस्था हमारी होनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मभूत आत्म साक्षात्कार करके इन पदों से ऊंचा उठ करके भगवान के साथ अपना निर्मल संबंध को स्थापित करना चाहिए। जो हमारा जीव का स्वरूप है, जिसके लिए हम सब आए हैं, जैसे माता सेवरी ने ये बात कहा मतंग ऋषि ने कि बेटी आश्रम से दूर मत जाना, आप हम सब भी प्रभुपाद जी के आश्रम का मतलब उस आश्रय में रहना, उस घर में रहना, उस सिद्धांत में रहना, उसी फिलॉसफी में रहना, चाहे कहीं भी शरीर हो, कहीं भी रहो, मन प्रभुपाद जी में और कृष्ण बलराम मंदिर में रहे आपका, यही आश्रम का नियम है। कहीं भी रहो, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार, कहा कि प्रभुपाद जी विश्व के हर बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद जी शांत रहे, चुप रहे। फिर एक भक्त ने कहा कि नहीं नहीं विश्व के हर घर में हर घर में इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर भी शांत रहे। 2 मिनट के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि हर विश्व के हर शहर में नहीं, विश्व के हर शहर के गांव में नहीं, विश्व के हर शहर गांव के अंदर जितने जीव हैं, उस जीवों के अंदर कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसे प्रभावित करना चाहिए हम सबको। धन्यवाद आप सबका। 2 मिनट समय है बस, आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछें, नहीं तो एक बार महामंत्र बोलते हैं और प्रसार की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की, आप सब भक्तों की जय।